الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين، وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
سلام
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو سامعین کرام، آپ حضرات سے دو مجالس سے خطاب کرنے کے بعد اب تیسری دفعہ پھر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ 5 دن درمیان میں آنے کے باوجود آپ کے ذہنوں میں سلسلہ گفتگو تازہ ہوگا بإذن اللہ. ہم بات کر رہے تھے کہ نہج البلاغہ یعنی امام علی علیہ السلام کے کلمات گرامی کی روشنی میں اصول دین کو سمجھنا اور اصول دین سے آگہی حاصل کرنا، اور اس حوالے سے جب میں نے گفتگو آپ کے سامنے شروع کی تو شاید آپ کے لیے گفتگو کا جو بلڈ اپ تھا وہ تھوڑا سا آپ کو عجیب لگا ہوگا، کیونکہ جب ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں تو اصول دین کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خاص طریقہ کار ہے اس کو بیان کرنے کا. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ویسے میں بار بار جو بھی جن دوستوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان سے میں ہمیشہ یہی گزارش کر رہا ہوتا ہوں کہ ایک وہ طریقہ کہ جو ایک سلیبس یا کریکولم بنایا جاتا ہے بچوں کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو تعلیم دینے کا، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہ تمام امور یا وہ چیزیں کہ جو حقیقت پر بیس کرتی ہیں اور جو ریالٹی سے انسان کو کنیکٹ کرتی ہیں، اس کا انداز اکثر اوقات مختلف ہوتا ہے. تو بہرحال زیادہ اس میں گفتگو کو دہرائے بغیر، کہ پہلی بات جو ہم نے بیان کی تھی اصول دین میں، اصول دین کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے نفس کی عمارت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں دین کے سائے میں، دین کی مدد سے، اور اس کام کے لیے جب بھی آپ کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کے لیے بنیاد کی فراہمی یا بنیاد قائم کرنا اشد ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر عمارت تعمیر ہی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ اس کے لیے کتنے خوبصورت منصوبے کیوں نہ بنا کے بیٹھے ہوں. تو وہ جو بنیاد ہے اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز سے پہلے معرفت نفس ہے، یعنی اپنے آپ کی معرفت ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے کلام امیر المومنین علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی، جو امید ہے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی ہوں گی. और उसमें खास तौर से जो बात थी वो ये, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें अल्लाह ताला ने जो जिस्म अता किया है, इस जिस्म को खुदा की राह में लगाना है। यानी इसकी अहमियत है, इंतहाई कलीदी अहमियत है, की रोल है, लेकिन इस जिस्म का रोल ये नहीं है कि इसके जरिए से लहवो लहब को हासिल किया जाए और खाली लज्जतों के पीछे लगा जाए। ये हरगिज इस जिस्म का काम नहीं है। यानी ये जिस्म इंतहाई अहम है और खुदा ने हमें एक बहुत बड़ी दौलत अता की है जिस्म की सूरत में, लेकिन इस दौलत का मकसद ये है कि इससे अपने अबदी और दायमी सरमाए को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तब ये जिस्म आपके लिए फायदेमंद है, तब ये जिस्म आपके लिए कारामद है, तब आपकी आंख बसीरत बनेगी, आपके कान समाअत बनेंगे, आपके जो भी कल्ब या जो भी जज्बात हैं वो हकीकतन कल्ब बनेंगे, और एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था हमारी गुफ्तगू का। और दूसरा जहां पे मैंने बात खत्म की थी वो ये था कि इंसान के नफ्स की पहुंच बे इंतहा, यानी उसकी जो रेंज है वो बे इंतहा ज्यादा है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक जुमले से इस्तफादा करते हुए कि आपने फरमाया था कि इंसान वो मखलूक है कि जो सिरातुम ममदूदुम बैनल जन्नति व नार, के वजूद इंसानी जो है वो एक सिरात है। आप इसे एक पुल, एक रोशन रास्ता, एक हाईवे समझ सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? बैनल जन्नति व नार, जन्नत और आग के दरमियान। यानी इंसान जो है वो सिरात, उसका वजूद सिरात है। अगर मस्बत सिमत अपना रुख कर ले, पॉजिटिव डायरेक्शन ले ले, तो सिरात मुस्तकीम है इलल जन्नत व इलल्लाह। और अगर नऊज़ुबिल्लाह मनफी सिमत अख्तियार कर ले, तो ये इस्तेलाह भी कुरान करीम ने इस्तेमाल की है सिरात मुस्तकीम के मुकाबले में सिरात जहीम, कि फकत सिरात मुस्तकीम नहीं है बल्कि सिरात जहीम भी है। और ये भी इंसान के नफ्स ही की हालत है कि यानी जहीम या जहन्नम की सिरात और सिरात मुस्तकीम, यानी वो सिरात जो खुदा तक ले जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और उसके लिए मैंने आपको खुतबा नंबर 220 और 219 से पढ़कर आपको बताया था कि इंसान की पहुंच यहां तक है, नफ्स यहां तक जा सकता है कि इस दुनिया में रहते हुए आखिरत तक का सफर तय कर ले और खुदा उससे मुनाजात और कलाम करे। ये बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जुमले हैं और क्लियर जुमले हैं, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। यानी ये कोई इन्फेरेंस नहीं है कि हम कुछ जुमलों से ये मतलब निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि नाजाहुम फी फिक्रहिम व कल्लमहुम फी ज़ाति उकूलहिम। बिल्कुल क्लियर जुमले हैं कि ऐसे कुछ बंदे होते हैं जिनसे फिक्र, जिनकी फिक्रों में खुदा मुनाजात करता है और जिनकी ज़ाते उकूल में खुदा कलाम करता है। तो ये भी नफ्स इंसानी है और वो भी नफ्स इंसानी है कि जो गफलत और जहालत का शिकार होकर सिराते जहीम पर रवा होता है। अच्छा, अब इसके बाद यहां तक हमने बात समझ ली, तो अब जो अगला उसके स्टेप है कि अगर हमारी ये पहली लेयर हमारी फाउंडेशन की सही से पड़ गई, और जैसा कि खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक दुआ दी है कि रहम अल्लाह इमरान, अल्लाह रहम करे उस इंसान पर जो इस बात का इल्म रखता है कि मिन आइन वफी आइन व इला आइन, कहाँ से आया है, कहाँ है और किधर जा रहा है। जो मारिफत नफ्स है वो अगली जो हमको अवेयरनेस देती है, वो अवेयरनेस हमको देती है खुद हमारे बारे में, और ये कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी हकीकत क्या है, हमारी तकलीफ क्या है, इला आइन यानी किस तरफ, यानी हमारी मंजिल क्या है, हमारा एम, ऑब्जेक्टिव, डेस्टिनी क्या है हमारे लिए। और इमाम अमीर उल मोमिनीन सलाम ने दुआ दी, अल्लाह रहम करे उस पर, यानी ये दुआ है कि अल्लाह की रहमतें उस इंसान के शामिल हाल हों जो इस इन हकायक का इल्म रखता है, और ये बगैर मारिफत नफ्स के मुमकिन नहीं है। तो अब जो हमारा अगला मरहला है, नेक्स्ट स्टेप, यानी सेकेंड लेयर ऑफ अवर फाउंडेशन, वो मन आरफा नफसहू फकद आरफा रब्बहू की रोशनी में, कि मारिफत लफ्ज, मारिफत नफ्स यकीनन मारिफत रब की तरफ ले जाती है। अगर आप इसके जुमलों पे गौर फरमाएं, मन आरफा नफसहू, जिस जो अपने नफ्स का आरिफ हो गया, फकद आरफा रब्बहू, ये एक लाजमी नतीजे के तौर पर बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। फकद आरफा रब्बहू यानी यकीनन वो अपने रब का आरिफ हो गया, अगर उसने अपने नफ्स को हकीकतन कमा हक्कुहू उसकी मारिफत हासिल कर ली। तो अब हम यहां से हमारा जो अगला मरहला है उसके दीन का, वह है तौहीद। और यहाँ पर कई नुकात ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं इंशाअल्लाह। अब मुझे नहीं पता कि मैं आज की गुफ्तगू में समेट पाऊंगा या नहीं सारी बातों को, लेकिन बहरहाल हम फिर उसको कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हजरात से दिक्कत और तवज्जो की गुजारिश है, और जैसा कि मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक आप इस गुफ्तगू में अगर दिलचस्पी रखते हैं, इसको वैल्यूएबल समझते हैं, इस इन नुकात मारिफत को, तो इसको जरूर दोबारा भी समाअत फरमाइएगा और इस पर अपने सवालात भी कायम कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह उनका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। देखिए, पहली बात जो है तौहीद के हवाले से वो ये है कि तौहीद इसको नहीं कहते हैं कि अल्लाह है या नहीं है, यानी कि मैं मानता हूं कि खुदा है, ये तौहीद नहीं। इस बात को हमें अपने जहन में क्लियर रखना चाहिए। तौहीद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से डिफाइन होती है, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे खुदा पॉसिबल हो सकते हैं और उनमें से उन सब की नफी करने के बाद या उनको निगेट करने के बाद हम खुदाए वाहिद की को कबूल करते हैं, उसकी बंदगी का इकरार करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि पहले मरहले और पहले दर्जे से ही इस बात का ऐलान करना है कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा किसी के माबूद होने का, इलाह होने का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। यह है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसको कहते हैं तौहीद। यानी जब हमारा ईमान इस जगह आ जाए कि हमारे लिए खुदा के सिवा कोई पॉसिबिलिटी ही ना बचे, 0.001% प्रोबेबिलिटी भी ना बचे कि हम ये कहें कि नहीं ये खुदा हो सकता है या ये इला हो सकता है और हम उसकी नफी कर रहे हैं, ये मतलब नहीं। अगर इस जगह पर हम आ जाते हैं इंशाअल्लाह तो हम हकीकतन मुवाहिद हो जाते हैं। ठीक है, अब तौहीद एक ऐसा मौजू है कि जो समझ लें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है। और अगर मैं, जाहिर है कि मैंने कोई इतना ज्यादा तो मुताले नहीं किया हुआ कि मैं इस किस्म के कोई दावे कर सकूं, लेकिन अगर ये बात कही जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि तौहीद के जितने गहरे मतालिब व मआरिफ को जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, ऐसा हमें कहीं और नहीं मिलता है, ये चीज हमें किसी और जगह नहीं मिलती है। और इसी बिना पर, यानी कि हमारे बुजुर्ग उलमा भी फख्र करते हैं, हकीकतन फख्र करते हैं उस सरमाए पर या उस तौहीदी कलाम और बयानात पर जो जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से हमको अता हुए, यकीनन। लेकिन उसके से ज्यादा जो अफसोसनाक बात है, जो बहुत अफसोसनाक बात है, कि शियों की 99% से ज्यादा अक्सरियत, शियों की 99% से ज्यादा तादाद उस कला में अमीरुल मोमिनीन से दूर है। और उसको अब मैं क्या कहूं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि समझना नहीं चाहते, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसको समझने की कोशिश नहीं करते, पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता कि क्या बात है। लेकिन 99% शिया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उन तौहीदी खुतबात और बयानात से बेखबर और बेबहर है। और मैं भी जसारत नहीं करूंगा कि मैं कोई बहुत ज्यादा उनको बयान करके या उनकी तफसीर बयान करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप पर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा बहुत, और ऑब्वियसली हम आप एक दूसरे के अभी सामने भी नहीं हैं, तो वो एक और मुश्किल हो जाएगी। मैं थोड़े थोड़े से इशारा करता जाऊंगा कि जहां जहां पर हम कुछ मतलब उन नूरानी कलमात से अपने फायदे के लिए कुछ अखज कर सकें। लेकिन इब्तिदा में, क्योंकि हमारे पास जो, और इस बात को शायद अगर मैं ये जसारत कर रहा हूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे उसूले दीन में सबसे कमजोर शोबा तौहीद है, और इस पर हम सबसे कम दिक्कत करते हैं और मेहनत करते हैं, जबकि असल कलीदी अहमियत तौहीद की ही है। यानी अगर आपका कुल ईमान, जिस चीज पर भी आप ईमान रखते हैं, अगर वो तमाम का तमाम ईमान तौहीद पर मुर्तकिज नहीं होता, कन्वर्ज नहीं होता, तो वो सब का सब कहीं ना कहीं से शिर्क के जुमरे में चला जाएगा, और मसाइल इंसान के लिए, यानी कम से कम वो मसाइल दरपेश हो जाएंगे कि इंसान आली मकामात तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए तौहीद खालिस लाजमी है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड के दो तीन कंसेप्ट्स बयान करना चाहता हूं कि जो आपके जहन में होंगे, लेकिन शायद तज़क्कुर हमारे लिए फायदेमंद हो। तो जब हम बात करते हैं तौहीद के हवाले से, तो तौहीद किस चीज का, हमारे लिए किस चीज का जुज बनती है? हमारे ईमान का। ईमान हमारा क्या है? ईमान किसको कहते हैं? ईमान के लफ्जी जो मतलब हम लेते हैं ना, हमारा बिलीफ सिस्टम, सेट ऑफ बिलीफ्स, वो कवानीन या वो निजाम जिस पर हम क्या करते हैं, अगर मैं कहूं कि ईमान के हवाले से, इन्हें जिस चीज पर हम ईमान रखते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा उस पर तकिया होता है, यानी हमारी उस पर रिलायंस होती है, हमारा उस पर ट्रस्ट होता है। उसके बाद हम उस बिलीफ सिस्टम के जरिए से अपनी जिंदगी में सुकून हासिल करते हैं। सुकून का क्या मतलब होता है? कि जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, जब हमारी जिंदगी में मसाइल, मसाइब और मुश्किलात हमको दरपेश होती हैं, तो आप किस पर जाके तकिया करते हैं? आप किस चीज पर जाके रिलाई करते हैं? किसके दामन में बैठकर सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं? वो आपका ईमान है, वो आपका बिलीफ सिस्टम है, कि जहां से आपको वो तमाम की तमाम चीजें मिलती हैं, या वो तमाम के तमाम उसूल और कवायद, और वो तमाम जिसे कह लें कि वो ठंडी हवा के झोंके भी मिलते हैं, कि जिनसे हमारी परेशानियां और हमारी जात में जो तपिश आ जाती है उसको सुकून और राहत मिलती है। ये हमारा ईमान है, बिलीफ सिस्टम है। और सबसे बढ़कर ये कि ईमान की अहमियत हमारी जिंदगी में इतनी ज्यादा होती है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारा ईमान खतरे में पड़ रहा है, हमारे ईमान पर आंच आ रही है, तो हम अपने ईमान को अपनी जिंदगियों पर भी फौकियत देते हैं। तो ये यानी कि इसे कहते हैं ईमान। ये हमारी जिंदगी का एक इंतहाई अहम तरीन जुज्व है, हमारी जिंदगी की एक इंतहाई अहम तरीन हकीकत है। तो ये मैंने जुमले आपके लिए क्यों कहे कि जो चीज मेरे और आपके लिए इतनी अहम हो, क्या उसका बनाना, क्या क्या उस सिस्टम का डेवलप करना दिक्कत का और कंसंट्रेशन और सही और एफर्ट इन तमाम चीजों का तकाजा करता है या नहीं करता, या बिलीफ सिस्टम जो है वो बगैर तहकीक के बगैर इल्म के सुनी सुनाई बातों पर कायम हो जाना चाहिए। यानी हम जिन चीजों को भी अपने बिलीफ सिस्टम का हिस्सा करार देते हैं, और जैसा कि हम अगर मुसलमान हैं, हम अगर मोमिन हैं, तो वो बिलीफ सिस्टम हमें मौजूद है। जैसा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि उनमें से अहम तरीन जो हकीकत है हमारे ईमान की वो तौहीद है, और उसके बाद विलायत है और आखिरत है। तो जो भी आपका ईमान कायम हो रहा है, जो बिलीफ सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसमें दिक्कत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें तहकीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम तीन बातों को सामने रखें तो आप बताएं कि ये तीनों चीजें हमारे ईमान के निजाम के बिल्ड होने की बुनियाद होना चाहिए या नहीं। नंबर एक, सदाकत, यानी सच की बुनियाद पर माने जिसको भी माने। नंबर दो, दयानत, यानी ऑनेस्टी के साथ कबूल करें, न कि किसी और मतलब की खातिर या किसी और असबियत की खातिर। और तीसरा ये कि उसकी बुनियाद इल्म पर हो। जो कुछ भी माने, जिस चीज को भी आप अपना बिलीफ सिस्टम बनाएं, अपना ईमान बनाएं, वो क्या होना चाहिए? उसकी बुनियाद दयानत पर हो, सदाकत पर हो और इल्म पर हो। अच्छा, इल्म के हवाले से भी हमने काफी ज्यादा गुफ्तगू की है आप हजरात से और ऐसे, क्योंकि इल्म जितना मुझे समझ में आता है और जो कुरान करीम और अहले बैत अलैहिम सलाम के कलमात से जो हकीकत हमको सुझाई देती है, वो ये कि इल्म की अहमियत कलीदी है। यानी इल्म बेस है, इल्म और अकल मजहब अहले बैत अलैहिम सलाम की बुनियाद है। और जो लोग इल्म और अकल से दूर अपने आप को रखते हैं, वो बहुत मुश्किल है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की इनायतों और उनकी नजर करामत के मुस्तहिक बन पाए। इल्म के हवाले से मैं थोड़ा सा एक लाइटर टोन में, कि इस पर गुफ्तगू तो बहुत सारी पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि ये नुक्ता और इसमें हमारे कई हजरात जो हैं, जाहिर है कि वो पहली दफा भी इस गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं, तो उनके इस्तेफादे के लिए भी, कि देखें एक बात हमेशा याद रखें कि आपका ईमान आपके इल्म के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे आपका इल्म तरक्की करता है, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपके ईमान का दर्जा भी बुलंद होता जाता है। ठीक है, इल्म और अक्ल। लेकिन इल्म के हवाले से हमारी काफी गलत फहमियां हैं, उसको मैं फिर से दूर कर दूं, जो बार बार मैं ये चीज दोहरा रहा होता हूं कि देखें हमारे लिए जब किसी चीज को जानते हैं, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर ये बात समझाऊं कि जैसे आपको कोई खाना, यानी आपने पहली दफा सुना कि बिलफर्ज बिरयानी एक बहुत लजीज खाना है, एक बड़े मजेदार डिश का नाम है बिरयानी। ठीक है, आपने किसी से, अपने दोस्त से सुना, किसी रिलायबल सोर्स से सुना कि ये एक बड़ा मजेदार खाना है, इसको आप जरूर खाएं। आपने उनसे ये किया कि जनाब, सबसे पहले क्या पूछा कि ये बड़ा मजेदार खाना है, ये पकेगा कैसे, तैयार कैसे होगा? अब उन्होंने आपको ला के सारे इंग्रेडिएंट्स और सारा पकाने की तरकीबें और मसाले और सब कुछ बताया। क्या आप उस खाने के, बिरयानी के आलिम हो गए? वो सब चीजें मालूम होने से कि इसमें क्या डलेगा, क्या मसाले आएंगे, कैसे पकेगा, पकाने की तरकीब क्या है, क्या आप आलिम हो गए? ये अब अपने से सवाल कीजिए। मेरे नुक्ते नजर से आप आलिम नहीं हुए, आपने सिर्फ मालूमात जमा की, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अभी आप इंफॉर्मेशन कलेक्टर हैं, आलिम नहीं। उसके बाद आपने जब थोड़ा सा चीजों को देखा, उसको जमा किया, तो आपको एक समझ आने लगी कि हाँ भाई, ये इन्होंने जो जो अज्जा बताए हैं ना, इससे यकीनन जो चीज पकेगी वो बड़ी अच्छी और मजेदार होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए। तो अब आप अपनी मालूमात से एक दर्जा और ऊपर आ गए, यानी जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, अब उस इंफॉर्मेशन की इफादियत भी आपको समझ में आने लगी। इसको कहते हैं कि आपको अपनी मालूमात का फहम हासिल हो गया, आप अपने मालूमात के बारे में बाफहम हो गए। तीसरी स्टेज पर आपने उसको पकाना शुरू किया, और जब वो चीज पक रही थी तो मिसाल के तौर पर उसमें से खुशबू बरामद होना शुरू हुई। वो खुशबू आपकी कुव्वते शाम्मा यानी स्मेलिंग जो आपके पास हिस है उसके जरिए से आपने महसूस की। अब आपने क्या किया, आपको वो खुशबू बड़ी अच्छी लगी, अब आपने उसको डायरेक्टली सेंस करना शुरू कर दिया। पहले आपने खाली मालूमात जमा की थी, उसके बाद आपने उस पर जो थोड़ा गौर किया उसके पेरिफेरल नॉलेज के बिना पर आपने उसका फहम हासिल किया, लेकिन अब जो ये खुशबू आपके नाक में जा रही है तो अब आप उसको दर्क भी कर रहे हैं कि हाँ भाई, जो चीज पक रही है ना, ये कोई बहुत अच्छी चीज होगी जिसमें से इतनी अच्छी खुशबू बरामद हो रही है। फिर उसके बाद चौथी मंजिल यह है इदराक, मालूमात फहम इदराक। उसके बाद चौथी मंजिल है कि आपने पकने के बाद उसको थोड़ा सा जायका किया, चखा, एक लुकमा लिया, दो लुकमे लिए, और आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ये जायका और चखना है, आपने कहा हाँ वाकई ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन अभी भी मसला हल नहीं हुआ। आखिरी मरहला है उसको तनावुल करके खाकर हजम करना, और हजम करने के बाद वो चीज आपके नोशे जान होती है, आपके वजूद का हिस्सा बनती है। मैं जितना समझ सका हूं, इस आखिरी मरहले तक जो पहुंच जाए वो हकीकतन आलिम होता है, उसको कहते हैं आलिम। हम ज्यादातर किसको आलिम गर्दानते हैं, उस पहले वाले को कि जिसने बहुत सारी मालूमात और इंफॉर्मेशन जमा करके रखी हुई होती है, यानी जिसने वो रेसिपी ले ली, रेसिपी लिख ली, और उसके बाद उसकी बहुत सारी कॉपियां बना बना के सबको बांटता फिरता है कि ये देखो ये बड़ी मजेदार डिश है, जबकि ना उसने उसकी खुशबू सूंघी है, ना उसने उसका जायका चखा है, और सबसे आगे बढ़कर ना उसने उसको खाकर हजम किया है, क्योंकि हाजमा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जहन में रखिएगा। हर इल्म हर एक को हजम भी नहीं होता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग, आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि तौहीद वो इल्म है जो बहुत कम लोग जिसके करीब जा पाते हैं। हजम करना तो बहुत दूर की बात है, खुशबू भी नहीं सूंघ पाते, सिर्फ लफ्जों तक रह जाती है तौहीद, क्योंकि तौहीद में एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला है कि खुदा गयूर है। खुदा का गयूर होना तौहीद के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। यानी क्या मतलब हुआ कि खुदा तौहीद तक आने का रास्ता फकत उसको देता है जो खुदा के लिए आगे बढ़ता हो, जिसमें शिर्क ना हो। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना, जिसमें न जिसमें सदाकत और दयानत की कमी होती है, उसे खुदा अपने इल्म तक, अपने पास आने तक रास्ता नहीं देता, खुदा उसका रास्ता रोक देता है, खुदा उसे खुद लौटा देता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या नाम लूं, बड़े बड़े लोग आप देखें, कुरान के हाफिज, ना मालूम क्या क्या, लेकिन तौहीद का शऊर नहीं रखते, तौहीद के हकायक को नहीं जानते। तो ये एक बुनियाद थी, इसको जहन में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ नॉलेज है कि इल्म, जब आप अपने ईमान की बुनियाद इल्म पर रखेंगे, और इल्म का मतलब ये होता है कि आप आगे बढ़कर उस चीज का जायका लें। कुरान का इल्म ये नहीं है कि मैं हाफिज कुरान हूं, कुरान का इल्म ये है कि आयात कुरानी की खुशबू सूंघी, और ये जुमले याद रखिएगा मेरे, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमले हैं जहां से मैं इस्तफादा कर रहा हूँ। खुतबाए काफिया में आपने अपने और रसूल खुदा के जब रिश्ता बयान किया है, आखिरी 4-5 सफात में आप देखिएगा, तो आपने फरमाया है कि रसूल खुदा ने की आगोश में मैंने परवरिश पाई है और मैं आपके साथ नबुव्वत की खुशबू को सूंघता था और रिसालत के नूर को देखता था। नबुव्वत की खुशबू सूंघता था और रिसालत के नूर को देखता था आपके हमरा। तो ये खुशबू, ये जायका, ये हाजमा, ये नसीब हो जाए तो फिर इल्म हकीकतन आता है, और जब हकीकी इल्म आता है तो फिर वो ईमान आता है कि जो हमें शुहदाए करबला में दिखता है। क्योंकि जब एक इंसान चख ले, जब एक इंसान खा ले, हजम कर ले, वो हकीकत इंसान के वजूद का हिस्सा बन जाए, खून के तरीके से उसकी रगों में दौड़ना शुरू हो जाए, तब उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। तब दुनिया की ताकतें, दुनिया के मुश्किलात, दुनिया की हैबतें, फिरौन सिफत लोगों की, वो फिर उसको शिकस्त नहीं दे सकती और उसको सरनिगू और उसका सर नहीं झुका सकती। ठीक है, यहां से आगे चलते हुए कि जैसे आपने उम्मीद है कि इस बातों को महफूज कर लिया होगा कि जब हम उसूल दीन में ईमान पर आते हैं और खसूसियत के साथ जब हम तौहीद के मरहले पर आते हैं, तो ये सारे के मसाइल शिद्दत के साथ नमूदार होते हैं, अपनी हैसियत का एहसास हमको दिलाते हैं। और अगर मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं कि इसी बिना पर अगर हम लोगों का इंटरव्यू लें तौहीद के बारे में, मुसलमानों और मोमिनीन से पूछें, इस्तफसार करें, तो आप यकीन करें कि हर इंसान का खुदा अलग निकलेगा, हर इंसान की तौहीद अलग होगी। शुरू सब यहीं से करेंगे कि अल्लाह, कोई कहेगा अल्लाह एक है, और कोई कहेगा अल्लाह अहद है, कोई कहेगा अल्लाह वाहिद है, कोई कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब हम ये पूछना शुरू करेंगे ना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा समझाओ, तुम्हारी नजर में अल्लाह एक और अल्लाह वाहिद और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते किसको हैं, इसके मायना क्या है, इसकी हकीकत क्या है, बताओ, तो सब के खुदा और सब का इला अलग अलग बरामद होगा। इसलिए तौहीद दकीक तरीन मामला और मसला है हमारे ईमान का। अगर हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ लौटते हैं कि आपने तौहीद को किस अंदाज से बयान फरमाया, खुतबा अव्वल उसमें तौहीद के इंतहाई बुलंद मारिफ मौजूद हैं, और इसी तरीके से कुछ खुतबात को उलमा ने खास तौर से आइडेंटिफाई किया है, जैसे खुतबा 184 है, उसमें तौहीद के बुलंद तरीन मारिफ मौजूद हैं, 184 जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं उन तमाम चीजों पे नहीं जा सकता क्योंकि वो आप लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी, और ज्यादती इस हवाले से हो जाएगी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो कलाम है, जैसे अल्लामा तबातबाई ने ये बात खास तौर से कही थी और हौजे में इस बात पर जोर डलवा के, जैसे फलसफा और मंतिक और इन चीजों को राइज करवाया कि आइम्मा का कलाम समझने के लिए इंसान को मंतिक के और फलसफे के उसूलों और रस्तों से आगाही जरूरी है। फलसफा और मंतिक क्या है? लफाजी का नाम नहीं है, बल्कि हकीकतन फलसफा और मंतिक इस चीज का नाम है कि सही आर्ग्यूमेंट कैसे कायम किए जाते हैं और सोच और फिक्र को किस तरीके से डेवलप और बिल्ड किया जाता है। अगर आप एक किसी भी बहुत डीप कंसेप्ट को लेके चल रहे होते हैं, तो वो डीप कंसेप्ट जो है वो खाली एक या दो लफ्जों में डिफाइन नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए आपको अपने बयान को पूरा उसकी कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ती है, उसके अज्जा तरतीब देने पड़ते हैं, उन अज्जा का कनेक्शन डेवलप करना होता है, और फिर उन सबको मिलाकर एक होल होलिस्टिक पिक्चर आपको बनानी होती है। इसका करना तो इस काम का एक तरफ, इसको समझना भी आसान नहीं है, और इसको समझने के लिए भी वो तमाम दिक्कतें और वो उसूल से इंसान को आगे ही होना चाहिए, और इसी वजह से हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलेमात से नज़दीक नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें ये सारी दिक्कत की जरूरत पड़ती है। बहरहाल, मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो भी तौहीदी बयानात हैं उनसे कई पॉइंट्स के, ताकि आपको पॉइंट्स की सूरत में बात हम बता दें, बजाय इसके कि फकत कलेमात बयान करें और उनकी तशरीह करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तौहीद जिस तरीके से बयान फरमाई, उसके पहला उसूल और कानून जो आपने हमको समझाया वो ये कि खुदा अल्टीमेट रियलिटी है, न कि अल्टीमेट या फाइनल कॉज है इन द चेन ऑफ क्रिएशन। अब ये जुमला मुझे नहीं पता कि मुझे मेरा ख्याल है कि इसकी थोड़ी सी तशरीह करना पड़ेगी। खुदा अल्टीमेट रियलिटी है, यानी हकीकत मुतलका है। खुदा वो हकीकत है कि जिसे अपने कायम रहने के लिए किसी और के सहारे, एहतियाज और उस पर तकिया करने की जरूरत नहीं है। खुदा उस हकीकत को कहते हैं, खुदा वो हकीकत है, अल्टीमेट रियलिटी है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग है और बल्कि तमाम चीजें उस पर डिपेंडेंट है। हम लोग बाज़ औकात एक ये रास्ता कायम करते हैं समझाने का, इस तरीके से बच्चों को ना समझाइएगा खुदा, क्योंकि फिर आखिर में जाके आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे। हम लोग इस तरीके से बाज़ औकात समझा रहे होते हैं कि देखो ये है, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, यानी एक पूरी चेन है कॉज एंड इफेक्ट की, एक चेन ऑफ क्रिएशन है, और ये चेन ऑफ क्रिएशन, ये जो खिलकत की जंजीर है, ये होते 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 आखिर में जिस जगह पर जाकर खत्म हो जाती है, उस आखिरी मरहले और मंजिल का नाम खुदा है, यानी खुदा फाइनल कॉज है या शायद अल्टीमेट कॉज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ही हमको समझाया है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमलों से ही हमको ये बात समझ में आई है कि खुदा खुदा फाइनल कॉज नहीं है। उसको नहीं कहते फाइनल कॉज। फाइनल कॉज कौन है, वो भी मैं आपकी खिदमत में बयान कर दूं, वो मखलूक अव्वल है, वो हकीकत अहमदी है, जहां पर क्रिएशन की चेन जाके रुकती है, जहां से खिलकत और मखलूकात का निजाम शुरू हुआ है, उसको कहीं अकल अव्वल कहा गया है, कहीं हकीकत अहमदी कहा गया है, कहीं नूर और नबी का या जाबिर, इस कस्म के लफ्ज यूज में, वो है, वो खुदा नहीं है। खुदा इस तमाम निजाम खिलकत से बालातर है और इस पर इससे बुजुर्ग तर है। अल्टीमेट रियलिटी को खुदा कहते हैं, न कि फाइनल कॉज इन द चेन ऑफ रिएक्शन को खुदा, क्रिएशन को खुदा कहते हैं। ये एक बहुत, और इस पर आप गौर कीजिएगा, जितना आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कलेमात पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि कुछ तो मैं इशारा कर दूंगा, लेकिन आप इंशाल्लाह इस चीज को बहुत एंजॉय करेंगे कि ये बड़ा बड़े यूनिक और बड़ा जबरदस्त नजरिया है जो आपने बिलखुसूस और फिर बाद में दीगर आइम्मा अलैहिस्सलाम के कलामात से भी हमको ये बात समझ में आती है। और जैसे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की भी एक हदीस मुझे समझ में आती है, याद आती है, कि जिसमें आपने फरमाया कि खुदा ने अपने लिए जो अस्मा सबसे पहले इख्तियार किए वो अली अजीम है, आयतुल कुर्सी जहां पे खत्म होती है ना, वहुवल अलीयुल अजीम, कि खुदा ने अपने लिए जिन अस्मा को सबसे पहले इख्तियार फरमाया वो अली अजीम। अब यहीं से आप बात समझ जाए कि अली अजीम यानी उसकी अजमत और उलू इस बात से बालातर है कि उसमें और मखलूकात में किसी किस्म का भी कोई डायरेक्ट लिंक मौजूद हो। अली अज़ीम। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से नतीजा जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलेमात से हमको हासिल होता है वो ये कि खालिक और मखलूक में किसी किस्म की शबाहत नहीं पाई जाती, सिमिलैरिटी नहीं, खालिक और मखलूक में किसी किस्म की सिमिलैरिटी नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में आपको कई खुतबात ऐसे मिलेंगे जहां इस दलील पर इस्तदलाल किया है कि क्योंकि मखलूक महदूद है लिहाजा खालिक लाजमन लामहदूद होगा, क्योंकि मखलूक किसी भी दर्जे की हो एहतियाज रखती है लिहाजा खालिक और जो अल्लाह है और रब हकीकी है वो हकीकतन गनी गनी अलल इतलाक होगा। यानी आपका जो इस्तदलाल है तौहीद पर वो ये कि खालिक यानी कि मखलूक जैसी है, आजकल के दौर में ये बहुत बड़ी जहालत है कि मखलूक की सिफात के जरिए से खुदा की सिफात को पता चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं या खुदा की हकीकत का पता चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक मिसाल याद दिला दूं कि पहले थोड़ा सा लाइटर नोट में बात हो जाए फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलमात का तहम्मुल करने की कोशिश करते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी से बात की थी, उनको तौहीद के हवाले से इस तरीके से बयान किया था कि कहा कि तुम फर्ज करो कि तुमने एक बकरी पाली और उस बकरी के लिए तुमने एक घर बनाया और उस घर में तुमने उसको अच्छा सा सजा बना जिसे हम पता नहीं शायद बाड़ा कहते हैं कि हाँ वो तुमने बनाया है और उसके बाद उसने तुमने उसको अच्छे तरीके से रहने की जगह दी है, तुम रोजाना उसको जाते हो अपने हाथ से चारा खिलाते हो पानी पिलाते हो उसके देखभाल करते हो। आपने उस सहाबी से पूछा कि अच्छा अगर उस बकरी से तुम्हारे बारे में पूछा जाए कि तुम किस किस्म के इंसान हो, इन उस बकरी से कहा जाए कि तुमको डिफाइन करे तुम्हारे बारे में बताएं कि तुम कौन हो तुम क्या हो, तो वो क्या बता सकती, वो ज्यादा से ज्यादा ये बता सकती है कि हाँ वो एक ऐसा शख्स है कि जो मेहरबान है नर्म दिल है ख्याल रखने वाला है जरूरियात पूरी करने वाला है गिज़ा देने वाला है एक अच्छा घर बनाने वाला है, और क्या बताएगी वो तुम्हारे बारे में। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा उस सहाबी से कि तुम हमारे पास जब बैठते हो और हमसे जिन हकायक और मआरिफ की तालीमात हासिल करते हो और उसकी और वो मआरिफ तुम्हारे जहन में जिस तरीके से परवान चढ़ते हैं और महफूज होते हैं, वो बकरी उसके बारे में किसी भी तरीके से कुछ जान सकती है कि वो क्या है, तो आपने फरमाया कि खुदा के और हमारे बारे में भी यही बात है। ये आइम्मा अलैहिस्सलाम की तौहीद है कि हम भी कि तू वही है जितना तूने बता दिया, जितना तूने अपने बारे में हमको बता दिया, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं जानते, उससे ज्यादा हमारा इल्म तेरे बारे में नहीं है। तो अब देखें इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, खुतबा 92। ये उस यानी कि ये दो मैंने आपको बताया कि जो दो बुनियादी तौहीद के मारिफ, दो बुनियादी के खुदा अल्टीमेट रियलिटी है फाइनल कॉज नहीं है और इसका नतीजा ये कि खुदा और मखलूक में कोई डायरेक्ट कपलिंग नहीं है, कोई डायरेक्ट कपलिंग नहीं है कि आप कहें कि जी मैं मखलूकात की सीढ़ियां चढ़ते 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 और यहां तक के जंप करके खुदा तक पहुंच जाऊंगा या जाते खुदा तक रसाई हासिल कर लूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि एक परमानेंट गैप है खालिक और मखलूक के दरमियान कि जो कोई भी उबूर नहीं कर सकता। ये तौहीद अहले बैत अलैहिस्सलाम। और जो महदूदियतें लिमिटेशंस कॉन्स्ट्रेंट्स मखलूकात में पाई जाती हैं ये बजाते खुद इस बात का सबूत है कि खालिक इन सबसे बालातर और मुबर्रा और आला है। ये दो बातें इमाम अली अलैहि सलाम फरमाते हैं खुतबा नंबर 92 बिल्कुल बिगिनिंग, फतबारक अल्लाहुल्लज़ी बुअदुल हिमम, बाबरकत है वो खुदा के जो हिमम हिम्मतों की जमाए, जो हिम्मतों से बईद है बालातर है, यानी तुम्हारी हिम्मत जितनी भी हिम्मत कर लो, जितनी भी लंबी छलांग लगा लो, जितनी भी ऊंचाई तक चले जाओ, वो अल्लाह जो बाबरकत है वो उन सबसे बईद है, दूर है, बुलंद है। वला यना लोहू हद सुल फितन, फितन यानी ये ते वाला फितन नहीं है, तोय वाला है, और ये फतानत जो है ये जहानत को कहते हैं, यानी जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहानत या जहीन इंसान होता है उसको कहते हैं जहीन व फतीन। तो वला यना लोहू हदसुल फितन यानी जो बड़ी आला मेयार की जहानतें हैं उनका किसी भी किस्म का तखमीना और अंदाजा गिरी उस तक नहीं पहुंच सकती। इसी वजह से आयमा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नेवर स्पेक्यूलेट अबाउट तौहीद, जात खुदा के बारे में कभी भी स्पेक्यूलेशन ना करो। और ये आपको उस बकरी वाली मिसाल से अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यों ना करो, क्योंकि वो सिर्फ अंधेरे में चलाया हुआ तीर होगा और जहालत और गुमराही का सबब बनेगा। वला यना लहू हदसुल फितन अल अव्वलुल्लज़ी ला गायत लहू फयंतही, वो अव्वल है कि जिसके लिए कोई गायत नहीं है, कोई हदफ नहीं है जिस तक वो पहुंचना चाहता हो या जो उसकी इंतहा या एंड को डिफाइन करे, वो ऐसा अव्वल है जो हमेशा अव्वल है। यानी हमारी जिंदगी में आप इस बात पे गौर फरमाएं कि जो अव्वल है वो फिर दोयम भी होता है, वो आगे भी बढ़ता है, और यहां तक कि वो अव्वल से अपनी इंतहा पर पहुंचता है, किसी जगह पे पहुंचता है। यानी कि इसी को आप समझ लें कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम एक लिहाज से अव्वल थे, लेकिन ये अव्वल जो है वो अव्वलीन लम्हा मेरा इस जिंदगी में आने का, वो आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि मैं एक इंतहा तक पहुंच जाऊंगा और वो अव्वलियत खत्म हो जाएगी, इंतहा तक, इंतहा में तब्दील हो जाएगी। अजीब जुमले हैं ये वाकई, उसकी मैं क्या तफसीर कर सकूं। ये वही है, ये जायके वाले जुमले कि खुदा अगर इसकी खुशबू सूंघना और जायका चखना नसीब फरमा दे, कि खुदा हमेशा अव्वल है और हमेशा आखिर है, ये कैसे पॉसिबल है। हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन, यानी ऐसा नहीं है कि खुदा वो अव्वल है जो आखिर बन जाएगा, या खुदा वो जाहिर या वो बातिन है जो कभी जाहिर हो जाएगा। खुदा हमेशा अव्वल भी है, खुदा हमेशा आखिर भी है, वो हमेशा जाहिर भी है, वो हमेशा बातिन भी है। ये है तौहीद कुरान, और जिसकी तफसील व तशरी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाई। अल अव्वलुल्लज़ी ला ग़ायत लहू फयंतही, वो ऐसा अव्वल है कि जिसके लिए कोई गायत और हदफ नहीं है कि जिसकी तरफ वो हरकत करे और उस इंतहा तक पहुंचे। वला आखिर लहू फयंकज़ी, और ना वो ऐसा आखिर है कि उस पर किसी किस्म की कजा गालिब आ जाए और उसको खत्म कर दे। इन्नल्लाहा बिकुल्ले शैइन मुहीत, अहाता इलाही है तमाम तमाम जिंदगी पर, जिंदगी उस तक नहीं पहुंचती है, जिंदगी में से कोई मखलूक नहीं है जो उस तक चली जाए, उसकी जात तक पहुंच जाए, लेकिन उसने हर एक का अहाता किया हुआ है। अब दो जुमले और, खुतबा 158, फलसना नअलमो, जिससे अब ये बात साबित हो रही है कि खुदा को कैसे जाना जा सकता है, किस हद तक जानना पॉसिबल है और कहाँ पर ये हदें तमाम हो जाती हैं। फलस ना नअलमो कुन हो अजमतिक, हमारे लिए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये खुतबा 158 है, और जो मैं नंबर आपके सामने बयान कर रहा हूं ये फिर जहन में रखिएगा, ये मुफ्ती जाफर हुसैन साहब के तर्जुमा की हुई नहजुल बलागा से, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ज्यादातर हमारे घरों में वही पाई जाती है। यह हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने भी बाद में किया था तर्जुमा। तो बहरहाल, तो ये मुफ्ती जाफर साहब का वर्ड ना एक दो खुतबे आगे पीछे होते हैं। फलसना नअलमु कुनहु अज़मतिक, हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कि हम उसकी अजमत की कुन यानी गहराई का इल्म हासिल कर लें। हम ये इल्म हासिल कर सकते हैं कि वो अजीम है, लेकिन उसकी अजमत की गहराई का इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब यहां से हमारे सामने एक नई चीज उभरना शुरू हुई, क्योंकि अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा में और मखलूक और आलम खिलकत में डायरेक्ट कपलिंग नहीं है, अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की चेन को ट्रेस करते हुए अगर हम फाइनल कॉज तक भी पहुंच जाएं, तो भी जात खुदा और हमारे दरमियान गैप है, फासला है, तो फिर क्या ये मुमकिन है कि हम खुदा को किसी भी तरीके से दर्क कर सकें, उससे कनेक्ट हो सकें, उसको पा सकें, उसको चाह सकें? अब ये वो टॉपिक है, ये वो चीज है कि जिस पर अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी अजमत की गहराई तक का इल्म हासिल कर लो। इल्ला इन्ना नअलमु अन्नक हय्युन कय्यूम, हाँ, लेकिन हम इस बात का इल्म रखते हैं कि वो हई है और कय्यूम है। कैसे इल्म रखते हैं? अभी ये जुमला भी मैं आपको बताता हूं, ये भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमलों में ही आता है। कैसे इल्म रखते हैं? हम ये इल्म रखते हैं कि बेशक वो हई और कय्यूम है। ला ताखुज़ो का सिनतुन वला नौम, ला ताखुज़ोहू नहीं है, ताखुज़ोका यानी इसका मतलब है कि आप हम्द फरमा रहे हैं। इस खुतबे में आप हम्द खुदा बयान फरमा रहे हैं कि हम तेरी अजमत की गहराई तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम इस बात का इल्म रखते हैं कि तू हय और कय्यूम है। तू वो है कि जिसको ना नींद पकड़ती है ना ऊंघ। लम यंतहे इलई का नजरुन वलम युद्रिक का बसरुन, कोई भी नजर तुझ तक नहीं पहुंचती और कोई भी बसीरत तेरा इदराक नहीं कर सकती। अब यहां से इस मकाम से तौहीद जो है ना हकीकतन बहुत दकीक हो जाती है कि ये कंप्लीट पैराडॉक्स है। यानी अगर आप जाहिरन उसको पहली नजर में देखेंगे ना, तो आपको प्योरली पैराडॉक्सिकल बयान आपको ये लग रहे होंगे कि बिल्कुल दो स्ट्रीम्स पैरेलल चल रही हैं, ये नहीं ये हाँ, ये नहीं ये हाँ। यानी हम अगर हम कहें कि खुदा की हकीकत क्या है, अजमत खुदा की हकीकत क्या है, खुदा को देख सकते हो नजर से बसर से? नहीं। क्या खुदा को उसकी सिफात के वसीले से अपने दिल की गहराइयों में जान सकते हो? हाँ। ठीक है, ये दो चीजें बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, एक नहीं एक हाँ। और जब तक ये दोनों रेल्स जो है ना, ये दोनों कायम नहीं हो जाती, हमारे ईमान पर तौहीद हकीकी तक रसाई मुमकिन नहीं होती। ठीक है, मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं परेशान करना चाहता इस बारे में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस बयान से कम अज कम आप लोगों को एक इंटरेस्ट जरूर डेवलप होगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलेमात पर जो नहजुल बलागा में हैं तौहीद के हवाले से, आप लोग उसका मुतालआ करके गौर जरूर फरमाएंगे। और मेरे टूटा फूटा बयान जैसा भी है, शायद आपके अगर इस शौक को डेवलप करने का भी वसीला बन जाए, तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूंगा खुदा का कि पर्पज सर्व हो गया।
मैं
एक
दुआ
दो
लेता हूँ
जुमले
अल्लाह
और। एक दो जुमले और सुन लें और मैं इंशाल्लाह फिर अपनी गुफ्तगू समेटता हूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम एक तरफ फरमा रहे हैं कि हकीकते खुदावंदी इम्पॉसिबल वहां तक पहुंचना, लेकिन सिफात के जरिए से शऊर खुदा, शऊर इलाह, बल्कि अगर जो हम पिछली दफा बात कर रहे थे मीसाक फितरत, मीसाक फितरत अगर इंसान की जात में उजागर हो जाए तो शऊर से आगे बढ़कर नूरे तौहीद की तजल्ली को देखना ये पॉसिबल है। लेकिन कहां पर, अगर आप मेरे दो पहली दूसरी गुफ्तगू को याद करें, वो कौन सा आईना है जो इस पूरी कायनात में सबसे आला मेयार का आईना है और खुदा के अस्माओ सिफात को मोस्ट एफिशिएंटली और हाईएस्ट लेवल पर रिफ्लेक्ट कर सकता है? वो आईना इंसान का कल्ब और नफ्स है, वो आईना इंसान का कल्ब और नफ्स है। और हमारी अगली मंजिल जब आएगी ना इंशाल्लाह विलायत पर, तो वहां पर ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला मैं आपको और बताऊं, खुतबा नंबर 106। और ये वाकयन जो है ना, इसमें अजीम शान मारिफत है, अजीम शान मारिफत इन जुमलों में पोशीदा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ला लिखल्क़िही बिखल्क़िही, अल्हम्दुलिल्लाह हम्द है तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए, अल मुतजल्ला जो तजल्ली करता है, ले खलके ही अपनी मखलूकात के लिए, बे खलके ही मखलूकात के वसीले से। और ये वो जुमला है कि जहां से मैंने उस चीज को अखज किया था जो आपसे पहले कहा था कि ट्रायंगल बनता है, एक कायनात है, खुदा है, अल्लाह है और इंसान है। तो वो जो मखलूकात का पूरा निजाम है जो अल्लाह की अस्माओ सिफात को मुतजल्ली करता है, वो ये कायनात है। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ला है वो खुदा जो अपने जो तजल्ली करता है, ले खल्क़े ही अपनी मखलूकात के लिए, बे खल्क़े ही अपनी मखलूकात के वसीले से और जरिए से। तजल्ली का मायना बहुत दिक्कत तलब है, हमने कई दफा इसको अर्ज किया है, समझाया है। जो साहेबान जाहिर है कि पहले अगर इस मायना से आशना नहीं है, तो अगर इस माना को, तजल्ली को आप नहीं समझेंगे तो इस जुमले का लुत्फ नहीं आएगा। फिर तजल्ली का मतलब ये होता है कि एक हकीकत अपने असर को किसी जगह पर मुंतकिल करे बगैर अपनी असल जगह को छोड़े हुए। यानी इसकी मिसाल क्या है जो उलमा देते हैं, बहुत आसान से आप समझ जाएंगे, कि जैसे बारिश बरसती है तो बारिश का कतरा बादल को छोड़ता है और जमीन पर आता है, लेकिन सूरज की रोशनी जब जमीन पर आती है तो हम ये नहीं कह सकते कि सूरज से रोशनी खत्म हो रही है और सूरज उठ के जमीन पर आ गया, बल्कि उसकी जो हिद्दत है, उसकी जो रोशनी है, उसकी नूरानियत है, सूरज के अपने मकाम छोड़े बगैर वहां से जमीन तक पहुंचती है। ये एक मायना, इससे भी ज्यादा बेहतर माना ये है, इससे भी ज्यादा अच्छा अगर आप समझना चाहते हैं, कि अगर एक आलिम, एक टीचर, एक उस्ताद क्लासरूम में लेक्चर दे रहा है और जो कुछ भी वो मतालिब कंसेप्ट्स बयान कर रहा है, स्टूडेंट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बैक वक्त 30-40 स्टूडेंट्स उसकी बातों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने जहन में उन चीजों को वसूल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो मतालिब उस्ताद के दिमाग में से निकल कर उनके दिमाग में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उस्ताद के जहन में भी वो मतालिब बल्कि हकीकतन और तरक्की करते हैं और अपनी जगह छोड़े बगैर, अपना मकाम तर्क किए बगैर एक दूसरी जगह पर उनका असर मुंतकिल हो जाता है। ये मतलब है तजल्ली का। तो जितनी भी हकीकतें हैं खुदाई खुदाई जितनी भी हकीकतें हैं वो जमीन पर नाजिल हुई हैं बसूरत तजल्ली। कुरान बसूरत तजल्ली हमारे हाथ में, यानी जिस कुरान को हम लफ्जों की शक्ल में देखते हैं और पढ़ते हैं, ये असल कुरान नहीं है, ये असल कुरान की तजल्ली है जो इस लफ्जी और कुतुबी किताबी शक्ल में हमारे सामने मौजूद। तो इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ला लखल्क़िही बिखल्क़िही, कि अगर तुम इस पूरे निजाम खिलकत को देखोगे तो इसमें तुम्हें क्या नजर आएंगी, आयात इलाहिया। इसी को कहते हैं आयात इलाहिया, यानी अस्मा व सिफात खुदावंदी की तजल्लियात आयात इलाहिया हैं, खुदा की निशानियां हैं। और दुआ अरफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले हैं कि ए खुदा इस जिंदगी में, यानी ये एक जुमला इन ब्रैकेट्स मैं लगा रहा हूं कि अगर मैं बेदार हूं, गाफिल और जाहिल नहीं हूं, तो आप फरमाते हैं कि इस जिंदगी में हर चीज मुझे तेरी तरफ पुश करती है, धक्का देती है। दुआ अरफा में इमाम हुसैन, हर चीज, यानी जो, क्योंकि हर चीज आयत इलाही है, हर शय में तजल्ली है खुदा है, हर शय में सिफात खुदाबंदी के हवाले से पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ला लखल्क़ी बेखल्क़ी, तो ये निजाम खिलकत अबस नहीं है, बेकार नहीं है, फजूल नहीं है, रिडंडेंट नहीं है, रिजेक्टेबल नहीं है। अगर बसीरत पैदा हो जाए तो तमाम आयात व सिफात व अस्माए इलाहिया की इंफॉर्मेशन देने वाला है ये निजाम आपको हर हर कदम पर। और यानी कि ये जुमले ये सिर्फ खाली अंबिया के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जैसे उलमाए बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ये जुमले, कि मैंने ये बात बताई थी कि अल्लामा तबातबाई ने एक बुजुर्ग आरिफ के फर्जंद के बहुत ज्यादा इसरार करने पर एक चीज बताई थी। वो कहते हैं मेरा मेरे लिए रात को सोना बिस्तर पर मुश्किल होता है, क्यों मुश्किल होता है, इसलिए कि मुझे दरो दीवार से तस्बीह की आवाज सुनाई देती है। कुरान कहता है ना कि वह इमिन शई इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई शय ऐसी नहीं है कि जो खुदा की तस्बीह उसकी हम्द के साथ ना करती हो। और ये कोई अफसाना या ये कोई एलेगरी या सिमिली नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। तो अगर इस कदर बेदारी हासिल हो जाए तो तजल्ली खुदा तमाम निजाम खलकत, वलिल्लाह जुनूदुस समावाती वल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो लश्कर खुदा है, आसमान और जमीन में जो कुछ है वो खिदमतगार निजाम इलाही है। ये तौहीद है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम हमको सिखा रहे हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम जिसकी तालीम हमको दे रहे हैं। और बस आखिरी जुमला और फिर मसाइब के सिलसिले की तरफ हम मुतवज्जे हों, एक और बात सुन लें इंशाल्लाह, कल फिर हम इस तौहीद के सिलसिले को आगे बढ़ाकर इंशाल्लाहुल अजीज विलायत से कनेक्ट करेंगे, जो हमारी तीसरी असल है के उसूल दीन में। तीसरी असल जो है वो विलायत है। और यहाँ भी मैं थोड़ा सा जो हमारा एक कन्वेंशनल स्ट्रीम है उससे डेविएट करूँगा, कि हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे कि नबुवत और रिसालत और इमामत, बल्कि हम बात करेंगे तौहीद के साथ विलायत, और फिर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि असल विलायत है और विलायत से ये स्ट्रीम्स निकलती हैं नबुवत और रिसालत और इमामत की। तो इंशाल्लाह फिर वो उस असल का जो कंसेप्ट है वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा जामियत के साथ आपको समझ में आ जाएगा। एक बस खुतबा और सुन लीजिए, खुतबे के दो तीन फिक्रे, के इमाम अली अलैहिस्सलाम तौहीद पर ही कहीं गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपके एक सहाबी थे ज़ुलब यमानी, उन्होंने आपसे सवाल किया, अजीब सवाल किया। अच्छा, इसमें मैं ये वाकया खास तौर से क्यों सुनाना चाहता हूँ कि ताकि हमें एक बात रियलाइज हो कि अगर हम वाकई अपने को लायक बनाकर, दयानतदार बनाकर, अहल बनाकर, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हों, तो आपके मुश्किल से मुश्किल सवाल का भी जवाब आता है और दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम जो ये समझते हैं कि वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं है किसी बात का, कि हम जितने भी उलमा हैं आप देखें कि वो इतनी गहरी और दकीक बातें और उतनी वो तमाम के तमाम जो इल्मी और इरफानी कारनामे वो कहाँ से अंजाम देते हैं। सब अगर आप सब से पूछेंगे ना, हर एक से, हर एक यही कहेगा कि यह अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की इनायत है, इमाम हुसैन अलैहि सलाम की इनायत है, मासूमीन अलैहि सलाम का करम है, कि जिसकी बिना पर हमें इतने जो दरवाजे हैं उलूम के, ये बाबे मदीनतुल इल्म के फैज और उनकी उनकी निगाह रहमत है हमारे ऊपर। तो जवाब आता है, जवाब आता है, रहनुमाई आती है, रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन सवाल कितना अजीब किया है ज़ुलब ने, हल रई तब्बक, हल रई तब्बक, यानी आप जो खुदा की बात और तौहीद और सब बयान कर रहे हैं, क्या आपने अपने रब को देखा है? अब ऑफेंसिव क्वेश्चन है ये, काफी ऑफेंसिव क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स तौहीद पर बात कर रहा हो, यानी कि अगर मुझ जैसा कोई आदमी या हमारे कोई कन्वेंशनल आलिम साहब गुफ्तगू कर रहे हो और बीच में कोई उठ के ये सवाल कर दे, तो पता नहीं कितनी जोर की डांट पड़े उसको कि तुम्हें कुछ भी तमीज नहीं है। हल रई तरबा का, लेकिन उस इंसान का लगता है अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने उसको जिस तरीके से जवाब दिया है ना, इससे ये बात समझ में आती है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम सच्चे सवाली को कभी रद्द नहीं करते। हाँ, जिन लोगों का काम ही जहालत फैलाना है, कि जिन लोगों जो लोग खाली सवाल ही इसलिए आके करते थे कि कोई ना कोई फितना बरपा करें, उनकी बात और है। हल रई तरब का आपने फरमाया कि अफअबुदु मा ला अरा, क्या मैं उसकी बंदगी करता हूं जिसको देखता नहीं हूं? अब ये सवाल भी अजीब, जवाब उससे ज्यादा अजीब, कि क्या मैं उसकी बंदगी करता हूं जिसको देखता नहीं हूं? उसने दोबारा पलट के पूछा, वह कई फतरा, फिर आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो आपने बता दिया कि देखना पॉसिबल नहीं है, उसके कुंड तक पहुंचना, हकीकत तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, उस तक रसाई मुमकिन नहीं है, हमारी हैसियत फकत उस बकरी की सी है कि जो जितना कुछ अल्लाह अपने फैज व करम के जरिए से हमसे कनेक्ट होता है उतनी मारिफत रखते हैं बस, फिर कैसे देखते हैं? और यहां पर इंशाल्लाह आज मैं नहीं, ये इशारा है, लेकिन इसके डिपेंड करता है आपके शौक पर। अगर आपकी तरफ से इस बारे में शौक का इजहार होगा ना, तो मैं इंशाल्लाह इसकी तशरीह में जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। वरना आप इन जुमलों को सुन लें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कैफ तराहो के जवाब में, ला तराहुल उयूना बे मुशाहदतिल ऐहान, ला तराहुल उयून, उसको ऐन आंख नहीं देखती, आंखें नहीं देखती, बे मुशाहदतिल अयान, उस मुशाहिदे के जरिए से कि जो आंखों के सामने मौजूद होता है। यानी आंखें जिन चीजों का मुशाहिदा करती हैं इस तरीके से उसको नहीं देखा जा सकता, पॉसिबल नहीं है। वलाकिन तुद्रिकुहुल कुलूब बेहकाइकिल ईमान, लेकिन कुलूब उसको दर्क कर लेते हैं। अगर आप अपनी पहली उसको याद करें, मेरी गुफ्तगू के इब्तदाई हिस्से को, कि जो मैंने क्या कहा था कि आप अगर उसकी खुशबू सूंघने के काबिल हो गए तो आप उसको दर्क कर पा रहे हैं, इदराक कर पा रहे हैं उसका, कि वो क्या हकीकत। इमाम अली अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे कि दिल देख लेते हैं उसको, लेकिन आपने क्या फरमाया, वलाकिन तुद्रिकुहुल कुलूब, लेकिन कुलूब उसको दर्क कर लेते हैं, उसकी खुशबू सूंघ लेते हैं। उसके नूर को महसूस कर लेते हैं। कैसे? बेहकाइकिल ईमान, ईमान की हकीकतों के वसीले से। अब आप इस जुमले को उससे जोड़ लीजिए जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ईमान क्या चीज होती है, ईमान कैसे बिल्डअप होता है। जिसका ईमान सुनी सुनाई बातों पर फकत डिपेंडेंट है, वो कहां से किस हकीकत को दर्क करेगा? वो बेहकाइकिल ईमान। और फिर उसके बाद एक दो जुमले और आपने फरमाए कि जिसमें जिसका मतलब यह है कि खुदा कौन है? लतीफ़ुन ला युसफ़ु बिल खफा। खुदा ऐसा लतीफ है कि जो खफी नहीं है। अच्छी लतीफ है, लतीफ यानी लाइट है, जिसको सेंस करना मुश्किल है, लताफत रखता है लेकिन खफी नहीं है। और खुदा बसीर है लेकिन हवास के जरिए से नहीं है, और रहीम है लेकिन रिक्कते कल्ब के जरिए से नहीं है। तो अब बहरहाल ये एक ऐसा बहाव है कि जिसमें रुकना, जिसको रोकना बहुत मुश्किल काम। लेकिन मैं यहां पर इस गुफ्तगू को रोक कर और दुआ करता हूं कि जो हमारी एक जो भी एक हकीर सी कोशिश थी, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर हम अपनी पब्लिक में बात बहुत कम करते हैं, इस किस्म के मौजूआत के, यानी या यूं कह लें कि हम अपने लोगों को बिलउमूम, अपने हजरात को, मोमिनीन को इस किस्म के मौजूआत के शायद लायक नहीं समझते कि ये बातें की जाएं। लेकिन बहरहाल मैंने इस उम्मीद के साथ ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में की कि आप में एक शौक पैदा होगा, और कम से कम ये शौक जरूर पैदा होगा कि अपने ईमान की जो भी इमारत आप बनाएं वो तहकीक, तजिये और दिक्कत के साथ और दयानत और सदाकत की बुनियाद पर, यानी चीजों को खाली सुन के ना माने, मेरी बात फकत सुन के कबूल ना करें कि ये किसी एक ने बता दी है तो बस ये ठीक ही होगा। नहीं, देखें। इसीलिए रेफरेंसेस आपके सामने मौजूद हैं, जुमले अरबी हम इसीलिए पढ़ देते हैं कि ताकि वो तर्जुमे वाला मसला भी ना रहे, और उसको तो इसको देखें, तहकीक करें और अपने ईमान को इन बुनियादों पर इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, बहुत बड़ा खजाना आपके नसीबे जान होगा तौहीदे नहजुल बलागा के हवाले से। तो मैंने आपके सामने दो तीन नुकात रखे इमाम अली अलैहिस्सलाम की तौहीद के हवाले से कि पहली बात यह है कि खुदा हकीकत मुतलक है और मखलूकात से मुशाबहत से कामिलन पाक है। मखलूकात की हर कमजोरी इस बात पर दलालत करती है कि खालिक और माबूद में वो कमजोरी नहीं पाई जाती, लेकिन खुदा अनरीचेबल नहीं है, बल्कि खुदा हमारी जिंदगियों में हर वक्त हमारे साथ है। कैसे? बसूरत तजल्ली। वो तजल्ली कहां पर है? तमाम कायनात में, तमाम कायनात में वो तजल्ली है, परवरदिगार उसकी अस्माओं सिफात के जरिए से मौजूद है। हमारी जिंदगियों में उस तजल्ली की शुआओं को कौन सी चीज सबसे बेहतरीन तरीके से कैच कर सकती है और रिफ्लेक्ट कर सकती है? मेरा कल्ब, बशर्ते के गफलत और जहालत का चिरक और मैल और जंग उस पे ना लगा हुआ। इंशाअल्लाह कल इस पे तफसील से बात और इस मौजू को आगे ले चलना। करबला के याद और शुहदाए करबला के जिक्र के हवाले से हमारा दिल ये चाह रहा था कि कुछ उन हजरात का नाम लिया जाए और कुछ उन शुहदा की बात की जाए कि जो आम तौर से ज्यादा इन्हें कसीर जिक्र नहीं है, जिनका जिक्र कसरत से नहीं होता, लेकिन हमारे लिए उनमें एक बड़ा अजीब सबक भी है। और सबक के हवाले से कि करबला जो है वो हकीकतन एक मकाम इश्क है, और मकाम इश्क में जो बात, जो पहलू सबसे ज्यादा वाजे है और उजागर है और जिसकी तरफ हमारी तवज्जो मुसलसल मबजूल रहना चाहिए कि हुज्जत खुदा यानी अब्द कामिले इलाही का इश्क खुदा की मोहब्बत के तनाजुर में, यह है करबला और यह है उसकी हकीकत। मैं जिक्र करना चाहता हूं जनाब वहाब का, वहाब इब्ने अब्दुल्लाह कलबी, और इनका जिक्र खास तौर से करने का दिल क्यों चाहता है, ताकि हमको पहली मंजिल पर एक बात यह समझ में आ जाए कि जिंदगी के अंदर कामयाबी और खुदा की बारगाह में कबूलियत दर हकीकत इंसान के नफ्स की सफा और शफाफियत की बुनियाद पर हासिल होती है, न कि उसके किसी अकीदे और उसके बैकग्राउंड और उसकी एफिलिएशंस और ये कि मैं 70 पुश्तों से मुसलमान हूं, और ये ना कि ये सारी चीजें कोई खास काउंट करती। वहब इस बारे में किसी को भी इख्तलाफ नहीं है कि ईसाई थे। हाँ, इस बारे में इख्तलाफ पाया जाता है कि वो ईसाई ही यानी जाहिरन इस्लाम लाए या नहीं लाए, इस बारे में कुछ इख्तलाफ है। वहब के ये कहाँ के रहने वाले थे? कूफे के रहने वाले थे। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, कूफे के रहने वाले थे। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम का दौर खिलाफत था कूफे में, तो इनके वालिद ने आकर इमाम अली से कहा था कि अगरचे कि मैं आपका हम मजहब नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आप अल्लाह के वली हैं, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि हम अपनी औलाद के हवाले से परेशान हैं कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि खुदा हमें औलाद दे, खैरियत के साथ दे, नेक औलाद दे। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, जैसे अभी मैंने ज़ुलब के हवाले से भी बताया, कि जो दयानत और सच्चाई के साथ आता है उसके साथ रवैये कुछ और होते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उस दुआ के नतीजे में वहब मुतवल्लिद हुए। अब ये क्यों कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से के लश्कर में कैसे पहुंचे, उसके बारे में भी जो रिवायत ज्यादा बयान की जाती है वो ये है कि ये कहीं गए थे शादी करने, और शादी करने के बाद ये कुछ दिन गुजरे थे, 10 दिन 15 दिन शायद इनकी शादी को हुए थे, और ये अपनी वालिदा और जौजा के साथ वापस कूफे को लौट रहे थे। अब इसमें आप अजीब इंतजाम है खुदा देखें, कितना बड़ा सहरा होगा, उस सहरा में कितनी जगह घेरी होगी इन अफवाज ने, लेकिन वहाँ जिस मकाम से गुजरे हैं तो वहां पर उनकी नजर पड़ी है कि यहाँ पर कुछ खेमे लगे हैं और फौजें और सवार और लश्कर जमा है। वो करीब गए हैं और जाके पूछा है कौन है, पता चला कि ये हुसैन इब्ने अली हैं, तो माँ ने फौरन कहा कि ये हुसैन इब्ने अली वही है, कहा कि बेटा ये वही हुसैन है जो उस अली के फर्जन है जिन्होंने तुम्हारे लिए दुआ की थी। अब हमारा फरीजा है कि हम इनकी नुसरत करें, हम इनको इनका कर्जा वापस करें। और यकीनन जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी ने जिस कीमियागरी का मुजाहरा किया जुहैर के हवाले से और के हवाले से दीगर असाब के हवाले से, वही सिफत वहब के लिए भी जाहिर हुई कि कहां तो वो एक हमदर्द के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में मुहिब्बाने विलायत विलायत के पाक दायरे में दाखिल हो गए, और सिर्फ वो नहीं, उनकी वालिदा भी और उनकी जौजा भी। और ये भी कहा जाता है कि ये दूसरे या तीसरे शहीद हैं, क्योंकि इनकी वालिदा इस बात पर बहुत ज्यादा मुसिर थी कि मेरा बेटा जाए और जनाब सैयदुल शुहदा पर अपनी जान कुर्बान करे। जब वहब जा रहे थे तो तो उस वक्त मैदान में जाते हुए जौजा ने रोका था, लेकिन माँ ने कहा कि ऐ बेटा, मैं तुझे अपना दूध ना बख्शूंगी, इसकी बात ना सुनना, इसकी बातों में ना आना। जाहिर है 15 दिन की जौजा थी। वहाब मैदान में गए हैं, जब उसके बाद उन्होंने जंग की है तो उनकी जौजा भी, अब ये अजीब जज्बात है, उनकी जौजा भी खेमे का पर्दा उलटकर मैदान में दौड़ी दौड़ी आई, और उन्होंने भी जंग करने की कोशिश की, और कहती है कि ऐ वहब, जन्नत में अकेले मत जाना, मुझे पता है कि तुम जन्नत में जा रहे हो, और जब तुम शहीद हो जाओगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहती, मुझे भी जन्नत में लेके जाना। जनाब सैयदुल शहदा बाहर निकलते हैं, समझाते हैं कि इस्लाम में औरतों पर जिहाद साकित है। उसके बाद वहब शहीद होते हैं। वहब का सर काट कर खयाम हुसैनी की तरफ वो मलऊन और शकी फेंक देते हैं, उछाल देते हैं। वहब की माँ निकलती हैं और उस सर को वापस उसकी तरफ उछाल लेती हैं और कहती हैं कि हम जो चीज राह खुदा में दे देते हैं फिर उसको वापस नहीं लेते। ये अजीब कमाल ईमानी है, ये अजीब तरक्की है। और उसके साथ एक और शहीद का जिक्र करने का दिल चाहता है, जिनका नाम हम कम लेते हैं, और वो हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे, जिनका नाम था अब्दुल्ला। और ये करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंदों में सबसे कम सन थे, इनकी उम्र मुबारक 10 या 11 साल की थी। और करबला में हुरमला के तीर से शहीद होने वाले ये दूसरे शहीद हैं, इन्हें हुरमला की तीरों ने सिर्फ जनाब अली असगर को शहीद नहीं किया है, बल्कि इस कमसिन बच्चे को भी शहीद किया है। और इसका मकाम यूं है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असरे आशूर मुसलसल जंग करते करते वो दर्दनाक मंजर सामने आया कि एक मलरून ने आपके पहलू में ऐसा नैजा मारा कि खून का एक फव्वारा आपके पहलू मुबारक से जारी हुआ। उस वक्त आप घोड़े की पुश्त पर कायम न रह सके, जमीन पर तशरीफ लाए, और आपकी जबान मुबारक पर यह जुमला था, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। उसके बाद के जो दर्दनाक मनाजिर हैं वो बयान करने की मेरी जबान में ताकत नहीं है कि किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मी पर जख्मी होते गए, किस तरीके से आपके अमामा जमीन से जमीन पर गिरा, किस तरीके से आपके सरे मुबारक पर जख्म लगना शुरू हुए। आखिर में वो वक्त आया कि जब कई अफराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर थे और कई अफराद आपके गिर्द घेरा डाले हुए खड़े थे, मलाइना अशकिया, के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आगे बढ़े। उसमें सनान इब्ने अनस का भी नाम है, उसमें खूली का भी नाम है, उसमें शिमर का भी नाम। जब एक मलऊन अपनी तलवार लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा तो ये बच्चा 10 साल का अब्दुल्ला इब्ने हसन ये खेमे पर ठहर न सका, खेमे के दरवाजे पर ये दौड़ कर आया और एक जुमला इसने कहा कि ए खबीस, क्या तू मेरे चचा जान को कत्ल करना चाहता है। उसने अपनी तलवार चलाई, और एक अजीब नफ्सियाती मसला है कि आप इस बात पर गौर करें कि जब बच्चे होते हैं कि अगर उनको कोई भी चीज अपनी तरफ आती हुई नजर आती है जिससे उन्हें खतरा महसूस हो तो वो अपना हाथ आगे कर देते हैं। इस बच्चे ने अपने दोनों हाथों को आगे किया और उसके दोनों हाथ बेक वक्त कटकर जमीन पर गिरे। उस हालत में उस बच्चे ने फरियाद बुलंद किया है, चचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे पिसर, मेरी आगोश में आ जा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को अपनी बाहों में लिया और अपना मरसिया पढ़ना शुरू किया उस बच्चे के साथ, और उस दौरान में फुर्मुला लानतुल्लाह अलैह ने वो तीर चलाया कि जिसकी वजह से ये बच्चा अब्दुल्लाह इब्ने हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में शहीद हो गया। वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन रब्बिश्रहली सदरी। परवरदिगार आलमीन आप तमाम हजरात के ईमान, इल्म और अमल में ज्यादती और तरक्की और इजाफा इनायत फरमाएं, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो दुनिया के किसी भी गोशा व किनार में हैं और मखसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जिन कुछ दुश्वार हालात का सामना कर रहे हैं, परवरदिगार आलमीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत और अहले बैत इस्मत व तहारत के सदक़े में उन तमाम मुश्किलात को बअहसन दफा और रफा फरमाए, आप सब के जिंदगियों में बरकत दे और आप सब के रिज्क और इफ़त और इज्जत और नामूस की बेहतरीन तरीके से हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद।